नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज महान सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती है। एक महान सम्राट महाराणा प्रताप वीर साहस और पराक्रम के साथ मातृभूमि की रक्षा के जज्बे के साथ उनका पूरा इतिहास ही मातृभूमि के लिए समर्पित रहा है। आज इस महान प्रतापी वीर की 483वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। उनकी वीरता और मातृभूमि की रक्षा हेतु उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर मुगलों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए लोहा लेते रहे। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जुड़े हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती पर। अनुप सर, मोबाइल लाइन पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार
जी। सर, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सर देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
महाराणा प्रताप एक वीर पराक्रमी और कर्मनिष्ठ योद्धा थे, जिनके जीवन का एक ही मकसद था, अखंड भारत और भारत की रक्षा करना। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इससे हम समस्त देशवासियों को यह सीखना चाहिए कि भारत माँ का एक वीर सपूत हम लोगों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके रास्ते पे हमें चलना चाहिए और उसके रास्ते पे चल करके हमें अपनी मातृभूमि, अपनी भारत और अपने देश की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसे बचाने के लिए सर्वोच्च निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह बात हमें राणा प्रताप से सीखनी चाहिए और यह बात हमें राणा प्रताप के कर्मों से, उनके विचारों से सीख करके अपने जीवन में उतार कर हम भारत को मजबूत और भारत को दुनिया के अंदर समृद्धिशाली बना सकते हैं।
जी सर। सर, महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर सबसे ज्यादा जो उनके सहयोगी रहे हैं वो जनजातीय समाज के लोग थे जिन्होंने उनको उनका सहयोग किया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
यह वर्तमान समय में आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि जब राणा प्रताप अकबर के साथ लड़ रहे थे और आक्रांताओं से युद्ध कर रहे थे, तो उनके जाति के लोग और उस समय के बड़े बड़े राजा और महाराजा उनका साथ छोड़कर के भग गए थे। महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे और अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, और उनका साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया तो भील जनजाति के लोगों ने दिया। वही उनके साथ खड़े रहे और महाराणा प्रताप उनके साथ घास की रोटियां खाए, और भील जनजाति के लोगों ने भी बना लिया था कि हमारा राजा अगर घास की रोटी खा रहा है तो हम भी घास की रोटी खाएंगे, लेकिन अपने राजा को झुकने नहीं देंगे। और उन्होंने वीर महाराणा प्रताप के साथ खड़ा होकर के शत्रु सेना का सामना किया। हमें तो महाराणा प्रताप से पहले नमन करना चाहिए जनजाति लोगों को, आदिवासी लोगों को और उन लोगों को, वंचित लोगों को, जिन्होंने राणा प्रताप के साथ खड़ा होकर के युद्ध किए, कि अगर वो लोग राणा प्रताप के साथ नहीं लड़े होते तो शायद राणा प्रताप की साहस टूट जाती। तो हमें तो सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, और भारत की सरकार और महाराणा प्रताप के लोगों को मानने वालों को, जो लोग महाराणा प्रताप को मानते हैं उनको भील समाज, जनजातीय समाज, आदिवासी समाज को न केवल पूजना चाहिए बल्कि उनको समर्थवान बनाने के लिए राणा प्रताप के विचारों के साथ अपना त्याग करके आगे आना चाहिए और उस जनजाति के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनसे किसी प्रकार का भेदभाव और राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह हमें राणा प्रताप के जीवन से सीखना चाहिए कि अपने लोगों की रक्षा और अपनी प्रजा की रक्षा किस प्रकार से की जाती है।
जी सर। सर, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर जिस तरीके समकालीन समय में प्रताप का जो त्याग था, तपस्या थी और मातृभूमि की रक्षा में वे जी, उनका जो किस तरीके का नजरिया था, किस तरीके नजरिया देखते सर आप इसको?
वह अपने आप को यह मानते थे कि मेरा जन्म जो हुआ है इसलिए हुआ है कि हम भारत माँ की रक्षा कर सके। उनके जीवन में भारत माँ की रक्षा और भारत भूमि की रक्षा और भारत की रक्षा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। महाराणा प्रताप के समकालीन योद्धाओं को भी उठा करके देखिए भारत के, तो सबके जेहन में यह बात थी कि हमें भारत की रक्षा करना है। वीर शिवाजी को उठा करके पढ़ लीजिए, उनके भी था कि हमें भारत की रक्षा करना है। तो उनकी जो दृष्टि थी सिर्फ और सिर्फ यह थी कि हमें दुनिया के आक्रांताओं से हमें भारत को बचाना है, हमें अखंड भारत की स्थापना करना है। और इसलिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किए, नहीं तो उनको क्या पड़ी थी भाई। उनका तो एक था, वो तो राजा थे, वो भी चाहते तो समझौता कर सकते थे, परंतु उन्होंने समझौते को स्वीकार नहीं किया। वो समझते थे कि अगर आज इनसे हम समझौता कर लेंगे तो कल यह ऊपर हमारे ऊपर हावी होने लगेंगे, इससे बढ़िया है कि इनसे लड़ लिया जाए। महाराणा प्रताप ने न समर्पण किया न समझौता किया, बल्कि डट करके दुश्मनों का सामना किया और हम जैसे नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को और संपूर्ण भारतवासियों को एक संदेश दिया कि अगर आप डट करके सामना हिम्मत और ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ करोगे तो दुनिया की किसी भी ताकत को झुकाई जा सकती है। अगर भारत की अखंडता को जिंदा रखना है, भारत को बचाना है, भारत की समृद्धशाली संस्कृति और परंपरा को बचाना है, तो आपको अपना निछावर करना होगा, दूसरे के निछावर के प्रति नहीं देखना होगा। यह हमें राणा प्रताप से सीख मिलती है और यह उनकी नजरिया थी।
तो क्या महापुरुषों की जयंती पर जो शासकीय अवकाश दिया जाता है, इसका क्या संदर्भ, क्या औचित्य देखते सर?
इसका अगर एक लाइन में मैं व्याख्या करूं योगेश भाई, तो महापुरुषों की जयंतियों पर जो छुट्टी दी जाती है वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए राजनीतिक दल और सत्ता वाले देते हैं कि उस दिन सरकारी कर्मचारी जाए और ऐश करे, बाकी कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार को चाहे शासन व्यवस्था को महापुरुषों के विचारों की इतनी चिंता होती तो एक आदेश निकालती कि छुट्टी नहीं दी जाएगी, बल्कि उस दिन पूरे सरकारी संस्थानों में सभी लोगों को एकत्रित करके महापुरुषों के विचारों पर चर्चा कराई जाएगी, जगह जगह संगोष्ठी रखी जाएगी। जिस प्रकार से प्रभारी मंत्रियों को भेजा जाता है कि आप जाओ झंडा फहराओ 26 जनवरी और 15 अगस्त की, उस प्रकार से महापुरुषों की जयंती को राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया जाता और सबकी ड्यूटी लगाई जाती कि आपको इस जिला में जाना है, आपको इस जिला में जाना है, आपको इस गांव में जाना है, और जाइए वहां महाराणा प्रताप के विषय में, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, डॉक्टर लोहिया के विषय में, गांधी के विषय में, तात्या टोपे के विषय में, बिरसा मुंडा के विषय में, जितने लोगों के नाम पे छुट्टी दे रहे उतने लोगों के विषय में चर्चा कराया जाता तो लोगों में एक चेतना जगती। सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने से कोई औचित्य नहीं निकलता है, ये तो सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, अपने वोट बढ़ाने के लिए उनको छुट्टी दे दी है कि देखो हम तुम्हारे लीडर के नाम पर छुट्टी दे दिए हैं, हमको वोट देना। लेकिन सच्चाई यह है योगेश भाई कि उस दिन सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेता है और अपने परिवार के साथ बढ़िया पिकनिक मनाने जाता है, और नहीं तो घर का काम करता है, और नहीं तो बच्चों के साथ दिन भर खेलता है। आज तो मोबाइल और गेम का जमाना है, दिन भर गेम खेलता है, उसको किसी महापुरुष से कोई मतलब नहीं रहती है। तो यह तो छुट्टी देना सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी चलाकी के लिए देती है और अपने वोट बैंक तैयार करने के लिए देती है, इसका कोई औचित्य नहीं होता है।
जी सर। सर आज की जो सत्ता व्यवस्था है या आजाद भारत की जो सत्ता व्यवस्था है जी, महापुरुषों के विचारों का त्याग और समर्पण किस तरीके से समझ पा रही सर?
आज की ही सत्ता व्यवस्था नहीं बल्कि आजादी के दिनों के बाद की भी सत्ता व्यवस्था देखिए, माने आजादी के हम तो अमृत काल में चल रहे हैं, जो भी सरकार रही 75 साल में, यह महापुरुषों के विचारों की आत्महत्या कर रही है, महापुरुषों के विचारों के चिरहरण करने का काम कर रही है। कोई भी सरकार हो वह किसी महापुरुष के विचार पर चलने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए महापुरुष सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रतीक बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का सिंबल बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जातियों का एम्बेसडर बन गए हैं। जो महापुरुष जिस जाति का है उस जाति में जाते हैं, कुछ उद्घाटन करते हैं, कुछ फीता काटते हैं, कुछ योजना चलाते हैं, किसी किसी के नाम पे तो भंडारा चलाया जाता है, और अब तो भंडारा में पेय पदार्थों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि सरकार जो है पुरुषों के विचारों की आत्महत्या करना चाहती है। अगर महापुरुषों के विचारों पर सरकार चलना चाहती तो उनके विचारों पर चर्चा कराती, उनके विचारों पर बड़े बड़े आयोजन करती। लेकिन आज जो आयोजन हो रहे हैं छिटपुट कहीं कहीं, वह आयोजन सिर्फ और सिर्फ दलीय आयोजन हो जा रहा है। आप देखिए कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है, वहां दलों के झंडे लगाए जा रहे हैं। गांधी की जयंती मनाई जा रही है, वहां दलों के झंडे लगाए जाते। बाबा साहब अम्बेडकर के मनाए जाते, वहां दलों के झंडा लगाए जाते। अरे भाई, दलीय झंडा लगाने से क्या होने वाला, महापुरुष के विचार आ जाएंगे? आपको महापुरुष को जिंदा रखना है तो उनके विचारों पर चर्चा करना होगा, उनके विचारों पर चलना होगा। और सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि महापुरुषों की जो जयंतियां है, जो पुण्यतिथियां है, जिसको मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम उनको अपने आचरण में उतारेंगे, तब जाकर के हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सरकार जो है और जो शासन व्यवस्था है, यह तो महापुरुषों के विचारों के खिलाफ है। इनके अंदर त्याग तपस्या और समर्पण नहीं है, बल्कि आज तो जो मुख्यमंत्री बन रहा है, जो मंत्री बन रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की झोलियां भरने का काम कर रहा है। जबकि वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बिरसा मुंडा जैसे लोग अपने घर को नहीं देखे, अपने परिवार को नहीं देखे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार माने और अपना सर्वस्व निछावर करने का काम किए।
तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सर ने अपना अमूल्य समय दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद आपको योगेश भाई कि आपने महाराणा प्रताप के विचारों पे चर्चा रखे, नहीं तो आज कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा कर रहे लोग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी बड़ा वाले सबका दोस्त।